नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
परमेश्वर ने हमसे किया यूं प्यार और चाहा कि पापों से ले उबार। परमेश्वर ने हमसे किया यूं प्यार और चाहा कि पापों से ले उबार। प्रायश्चित स्वरूप अपना पुत्र दिया कि विश्वासी उसमें पाए क्षमा का उपहार। ज्योति आई है जग में कर्ण दूर अंधकार, पार से यहां नहीं किया गया स्वीकार। परमेश्वर को जानते हुए बिना महिमा उनको दी, अंधकार से जोड़ा
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और भले चंगे होंगे और प्रतिदिन की बाइबल अध्ययन से आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। मुझे विश्वास है कि इन दिनों आप उत्पत्ति की पुस्तक से नई नई बातों को सीख रहे हैं। कृपया आप इसकी जानकारी अपने मित्रों को भी अवश्य दें और पत्र लिखकर मुझे भी अपनी आशीषों को बताएं। हाँ, तो पिछले अध्ययन में हमने अध्याय 19 और 20 से अध्ययन किया था, जिसमें हमने सदोम और अमोरा नगर के विनाश और इब्राहिम की पत्नी सारा को बहिन कहना, फिर इस गलती को स्वीकार करना आदि विषयों को देखा था। लेकिन आज हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 21 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा कि इब्राहिम को अपने पापों की जानकारी होना आवश्यक था। इससे पहले कि इब्राहिम और सारा से पुत्र उत्पन्न हो, उन्हें अपने पापों को स्वीकार करना पड़ा। और अब 21 अध्याय में हम इसहाक के जन्म को देखते हैं। तो आइए हम उत्पत्ति 21 अध्याय उसके 1-2 पद को पढ़ते हैं। तब यहोवा ने अपने वचन के अनुसार सारा की सुधि ली, और यहोवा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सारा के लिए किया। अतः सारा गर्भवती हुई और इब्राहिम के लिए उसके बुढ़ापे में ठीक उसी समय पर जिसके विषय परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। मित्रों, हम यहाँ पर पाते हैं कि इसहाक का जन्म और यीशु मसीह के जन्म में एक विशेष समानता है। मैं विश्वास करता हूँ कि इसहाक का जन्म हुआ ताकि वह हमारे सामने उस महान सच्चाई को रखे, इससे पहले कि यीशु का जन्म हो। इसहाक का जन्म एक निश्चित समय पर हुआ जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया था, और पौलुस प्रेरित गलतियों की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 4 पद में कहते हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। मित्रों, हम आगे उत्पत्ति उसके 21 अध्याय उसके 3 से 7 पद में पढ़ते हैं, और इब्राहिम ने अपने पुत्र का नाम इसहाक रखा जो उससे उत्पन्न हुआ था, अर्थात जिसे सारा ने उसके लिए जन्म दिया था। जब इब्राहिम का पुत्र 8 दिन का हो गया तो इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब उसका पुत्र इसहाक उससे उत्पन्न हुआ तब इब्राहिम 100 वर्ष का था, और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है और इसे सुनने वाले मेरे साथ आनंदित होंगे। फिर उसने कहा, क्या कोई इब्राहिम से कह सकता था कि सारा बच्चों को दूध पिलाएगी? फिर भी उसके बुढ़ापे में मुझसे उसके लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर कुछ ध्यान देने योग्य सच्चाइयां हैं जिसे हमें देखने की जरूरत है। सर्वप्रथम, इसहाक का जन्म एक आश्चर्यजनक जन्म है। यह प्रकृति के नियम के विपरीत है। पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री के 4 अध्याय में लिखते हैं, रोमियो 4:19 में, कि इब्राहिम अपने मृतक समान शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर मृत्यु से जीवन देते हैं, अर्थात यह एक आश्चर्यजनक जन्म था। यहाँ पर हमें परमेश्वर के कार्य की सत्यता पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह की अलौकिक जन्म को संसार में दिखावा नहीं किया, जैसे यह कोई नई बात है। इसके लिए उसने मनुष्यों को तैयार करना आरंभ कर दिया था। इसलिए जब हम मुड़कर इसहाक के जन्म को देखते हैं तो यह हमारे लिए आश्चर्यजनक जन्म है। यहाँ पर हम यह भी पाते हैं कि परमेश्वर इब्राहिम और सारा के साथ विचार करते हैं। उन्हें इस बात को मान लेना था कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अर्थात उनके लिए बच्चे पैदा करना असंभव है। इब्राहिम 100 वर्ष का है और सारा अब 90 वर्ष की हो चुकी है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसहाक का जन्म ऐसा है कि इस जन्म के साथ उनका कोई भी लेना देना नहीं है, अर्थात उनका अपना कोई योगदान नहीं था। हम उत्पत्ति 21 अध्याय उसके 8 पद में पढ़ते हैं, और वह बालक बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और जिस दिन इसहाक का दूध छुड़ाया गया उसी दिन इब्राहिम ने एक बड़ा भोज दिया। मित्रों, यह छोटा लड़का माता के दूध से तृप्त किया जाता था, लेकिन वह दिन आ गया कि उसे माता का दूध पीना छोड़ना है। यहाँ पर इसके द्वारा भी हमारे लिए एक सीख है। हमें पहला पत्रस 2:2 में बताया गया है, नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए ललायत रहो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ। मित्रों, जब माँ खटोली में पड़े छोटे बच्चे के लिए बोतल में दूध तैयार करती है तो उसे देखकर उस बच्चे का पूरा शरीर हरकत करने लगता है। कभी उसका पैर हवा में लहराता है तो कभी उसका हाथ, और कभी वह जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसे उसकी बोतल चाहिए। जिस प्रकार नवजात शिशु दूध के लिए ललायत रहते हैं, तुम भी वचन के लिए ललायत रहो ताकि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ। मित्रों, एक नया मसीही होना क्या ही अद्भुत है। वह वचन के दूध के लिए अधिक ललायत रहता है, लेकिन एक दिन आता है जब आप एक विश्वासी के रूप में बढ़ने लगते हैं। सिर्फ भजन संहिता 23 और यूहन्ना 14 अध्याय को पढ़ने के बजाय आप पूरी बाइबल पढ़ने की कोशिश करते हैं। कृपया आप अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। मसीह में बच्चा या बालक बनकर ही हमेशा बैठे ना रहें। इब्रानियों की पत्री 5:13 में परमेश्वर की चेतावनी को हम देखते हैं, जहां लिखा है, प्रत्येक जो दूध ही पीता है वह धार्मिकता के वचन का अभ्यस्त नहीं, क्योंकि वह बालक है, परंतु ठोस भोजन तो बड़ों के लिए है। मित्रों, आप भी बढ़ें और वचन में मजबूत बने। अब आगे हम देखते हैं कि हाजिरा और इस्माइल घर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो आइए हम उत्पत्ति 21:9-10 को पढ़ें। तब सारा ने मिस्र हाजिरा के पुत्र को, जो इब्राहिम से उसको उत्पन्न हुआ था, उपवास करते देखा। अतः वह इब्राहिम से बोली, इस दासी को इसके पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ उत्तराधिकारी ना होगा। मित्रों, इस छोटे लड़के इसहाक का घर में आगमन ने एक बड़ी समस्या या परेशानी के विचार को उत्पन्न कर दिया है। हम पाते हैं कि हाजिरा का पुत्र इस्माइल इब्राहिम के पुत्र इसहाक को चिढ़ा रहा था। अब हम यहाँ इस्माइल के व्यवहार और चरित्र को देखना आरंभ करते हैं। इस समय तक ऐसा लगता था कि इस्माइल सुशील और अच्छा लड़का है, परंतु अब यहाँ पर दूसरे पुत्र के परिवार में आते ही इस्माइल अपने सही रूप में आ जाता है। मित्रों, यहाँ पर एक उदाहरण है जो विश्वास के दो रूप व चरित्र को दर्शाता है। जब तक आप पूर्ण रीति से नहीं बदले हैं, आपके स्वभाव में वही पुराना स्वभाव रहेगा और वही पुराना स्वभाव आपको अपने नियंत्रण में रखेगा और आप जैसा करना चाहते हैं वैसा ही करते हैं। एक पुराना संगीत जो इस प्रकार है, आप वह कह रहे हैं जो स्वाभाविक तौर से होता है। आप जो कुछ करते हैं वह स्वाभाविक तौर से होता है, परंतु यह हमेशा अच्छा नहीं होता। परंतु जब आप उद्धार प्राप्त कर लेते हैं तो आप एक नए व्यक्ति बन जाते हैं, आपके अंदर एक नया स्वभाव आ जाता है। और जब आप एक नए स्वभाव को पा लेते हैं तो वहीं से हमेशा समस्या या परेशानी आरंभ होती है। पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री उसके 7 अध्याय में पुराने स्वभाव और नए स्वभाव के बीच युद्ध के बारे में लिखते हैं। रोमियो 7 अध्याय उसके 19 पद में, क्योंकि जिस भलाई की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं कर पाता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता रहता हूं। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि नया स्वभाव गलत करना नहीं चाहता है, परंतु पुराना स्वभाव उससे कराना चाहता है और पुराना स्वभाव नियंत्रण में रखता है। एक समय ऐसा आता है कि आपको निर्णय लेना होता है कि आप किस स्वभाव में जीवन बिताना चाहते हैं। इस विषय में परमेश्वर पर निर्भर रहने के लिए आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दें कि वह आपके जीवन को चलाए, या आप अपने जीवन को शरीर की अभिलाषा के नियंत्रण में दे दें जो आपके जीवन का संचालन करेगी। परमेश्वर के संतानों के लिए कोई तीसरा विकल्प नहीं है। दासी के पुत्र का घर से बाहर निकाला जाना आवश्यक है, और यही बात हम उत्पत्ति की पुस्तक के 21 अध्याय में यहाँ पर पाते हैं कि हाजिरा का पुत्र बाहर निकाला जाए। उत्पत्ति 21 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, अपने पुत्र के कारण इब्राहिम को इस बात से गहरा आघात पहुंचा। मित्रों, जो भी हो, जहां तक शरीर की बात है, इश्माएल भी इब्राहिम का ही बेटा था, जैसे इसहाक। इसहाक का बस अभी जन्म ही हुआ है और वह एक छोटा बच्चा, उसे अभी कुछ भी नहीं मालूम है, परंतु इश्माएल इस घर में काफी समय से रह रहा है और इस समय वह एक किशोर अवस्था में है और इब्राहिम का लगाव उसके साथ है। इसलिए यह इब्राहिम के लिए बहुत ही दुख का समय होगा यदि वह उसे घर से बाहर निकाल दे। तब मैं यहां पर पुनः आपको वापस वहां ले जाना चाहता हूं जहां पर परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा को ऐसा करने की अनुमति या स्वीकृति नहीं दी थी, और परमेश्वर इस्माइल को स्वीकार नहीं कर सकता है। यह पाप है, परमेश्वर ने इसे स्वीकृति नहीं दी और उसका कोई भी उद्देश्य नहीं था कि वह इसे स्वीकृति दे। यह घड़ी इब्राहिम के लिए हृदय विदारक थी, परंतु इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने बेटे को दूर भेजना ही था। मित्रों, कमजोर सारा इस बड़े लड़के को अपने साथ सब जगह लेकर नहीं जा सकती थी जो उसकी हंसी उड़ाए। प्रिय मित्र, यदि आप विश्वासी हैं तो आप इन दोनों स्वभावों के साथ शांति से नहीं रह सकते हैं, आपको एक को चुनना होगा। याकूब के पत्री 1 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, क्योंकि दुचित्ता होने के कारण वह अपनी सारी चाल में अस्थिर है। मित्रों, यह पद आज हमारे बहुत से मसीहों के जीवन की अस्थिरता और असुरक्षा का बयान करता है। वे संसार के जैसे जीवन जीना चाहते हैं और साथ में मसीह के साथ भी रहना चाहते हैं। वे लोग आत्मिक रूप से दुविधा में हैं, वे दोनों को ही प्रसन्न करना चाहते हैं, परंतु आप ऐसा नहीं कर सकते। यूनानियों की एक घुड़दौड़ हुआ करती थी जिसमें दो घोड़ों को एक साथ बांधते थे और घुड़सवारी अपना पैर एक घोड़े की पीठ पर और दूसरा पैर दूसरे घोड़े की पीठ पर रखता था। तब दौड़ शुरू होती थी और यह दौड़ तब तक बहुत अच्छी रहती थी जब तक कि दोनों घोड़े साथ में दौड़ रहे हैं। मित्रों, मेरे पास और आपके पास दो स्वभाव हैं, एक काला घोड़ा और दूसरा सफेद घोड़ा। यह बहुत ही अच्छा होगा यदि ये दोनों साथ साथ दौड़ रहे हैं, परंतु ये दोनों साथ साथ नहीं दौड़ पाते हैं या नहीं पाएंगे, क्योंकि काला घोड़ा एक रास्ते को जाता है और सफेद घोड़ा दूसरे रास्ते को। जब वे ऐसा करते हैं तो मुझे और आपको निर्णय लेना है कि हमें किस घोड़े के साथ जाना है। क्या हम अपने पुराने स्वभाव को छोड़ने जा रहे हैं या नए स्वभाव को, इसलिए हमें कहा गया है कि अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो और अपने अंगों को धार्मिकता का हथियार होने के लिए। पौलुस आगे कहते हैं कि जो काम व्यवस्था शरीर के द्वारा दुर्बल होते हुए न कर सके उसे परमेश्वर का आत्मा अब पूरा करता है। रोमियों की पत्री 8:3-4 में हम इसे पढ़ते हैं। व्यवस्था मनुष्य के पुराने स्वभाव को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है लेकिन वह असफल हो गई, परंतु अब परमेश्वर का आत्मा नए स्वभाव को सामर्थ्य से भर रहा है ताकि जो व्यवस्था न कर सके उसे आत्मा कर सके। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि हाजिरा का पुत्र इस्माइल का चरित्र प्रकट होना आरंभ होता है। यही स्वभाव हम बाद में भी पाते हैं जो उस राष्ट्र या जाति के लिए प्रकट किया गया है। एक राष्ट्र जो विरोधी है और जिसका हाथ अपने ही भाई के विरोध में उठा है। इस्माइल की यही तस्वीर हमारे सामने शताब्दियों से चली आ रही है। मित्रों, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसहाक का जन्म हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पूर्व लक्षण है। परमेश्वर ने उसे अचानक से मनुष्यों के बीच कुंवारी द्वारा जन्म देकर आने नहीं दिया। इसके पहले कई आश्चर्यजनक जन्म के द्वारा उसने हमारे मन और विचारों को तैयार किया, जिसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म, शिमशोन का जन्म और यहाँ पर इसहाक का जन्म है। मैं आपके अध्ययन को या ध्यान को इसहाक के जन्म और यीशु मसीह के जन्म के बीच एक विशेष तुलना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। तो आइए हम इस तुलना को देखें। पहला, इसहाक और यीशु मसीह दोनों के जन्म की प्रतिज्ञा की गई थी। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को कसदियों के ऊर देश से 25 साल पहले बुलाया था, तब परमेश्वर ने उससे कहा था, मैं तुझे और सारा को एक पुत्र देने पर हूं। अब 25 वर्ष बीतने के बाद परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया है। उसने इसराइल जाति से भी कहा था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। जब दिन पूरे हुए तो यीशु मसीह का जन्म बेतलेहम नामक गांव में हुआ और यहां पर भविष्यवाणी पूरी हुई। दोनों के जन्म के बारे में प्रतिज्ञा की गई थी और वह पूरी हुई है। दूसरा है, दोनों के जन्म की प्रतिज्ञा और पूर्ण होने के बीच एक लंबा समय लगा। वास्तव में कुल 25 वर्ष लग गए इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण होने में। और यीशु मसीह के जन्म के साथ आप बहुत सी पीढ़ियां पीछे जा सकते हैं। उदाहरण के रूप में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि दाऊद के वंश से एक उत्पन्न होगा और यह यीशु मसीह के जन्म के 1000 वर्ष पहले की प्रतिज्ञा थी। यह यहाँ पर एक बिल्कुल अनोखा समानांतर है। और तीसरा है, सारा और मरियम को जन्म की घोषणा विश्वास करने के लिए कठिन और असंभव लग रही थी। आपको याद होगा कि परमेश्वर के दूत इब्राहिम ने सदोम जाते समय मिले और उन्होंने इसहाक के जन्म की घोषणा की, जो पूर्णतः असंभव लग रहा था। सारा हंसी और मन में कही, यह कभी भी नहीं हो सकता, यह विश्वास से परे है। और जो भी हो, सबसे पहले कौन था जिसने कुंवारी से जन्म लेने के बारे में प्रश्न उठाया? यह स्वयं मरियम ही थी। जब स्वर्गदूत ने घोषणा की तो उसने कहा, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुंवारी ही हूं, अर्थात मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। और चौथा है, इसहाक और यीशु मसीह के जन्म के पहले ही दोनों के नाम रखे गए थे। इब्राहिम और सारा से कहा गया कि उनसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम इसहाक रखना। और यीशु मसीह के जन्म के साथ भी हम यही पाते हैं कि उसके जन्म के पहले ही उसका नाम रखा गया। स्वर्गदूत ने यीशु से कहा, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। मत्तियुस सुसमाचार 1:21 में हम पाते हैं। और आगे है पांचवा, दोनों का जन्म परमेश्वर द्वारा नियुक्त समय पर ही हुआ। उत्पत्ति 21:2 में लिखा है, ठीक उसी समय पर जिसके विषय परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था, सारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। और यीशु मसीह के जन्म के बारे में कहते हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने जो स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। गलतियों की पत्री 4:4 में इसे हम पढ़ते हैं। और छठवां है, दोनों का जन्म आश्चर्यजनक रीति से हुआ। इसहाक का जन्म एक चमत्कार था और निश्चय ही यीशु मसीह का जन्म भी, क्योंकि इसमें किसी मनुष्य की कोई भी भागीदारी नहीं थी। और सातवां है, दोनों ही पुत्र अपने पिता के प्रिय थे। हम पढ़ते हैं कि इब्राहिम ने अपने पुत्र का नाम इसहाक रखा, जिसे सारा ने उसके लिए जन्म दिया था। इसहाक का अर्थ है हंसी। यही नाम उसने अपने पुत्र को दिया, क्योंकि इससे पहले जब परमेश्वर ने पुत्र देने की घोषणा की थी तो वह हंसा था, क्योंकि इसमें उसका मात्र एक आनंद था। यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने आकाश में से कहा, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 3:17 में पढ़ते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। मित्रों, दोनों ही पुत्र आनंद के कारण थे या आनंद थे। और आठवां है, दोनों ही पुत्र अपने पिता के आज्ञाकारी थे, यहां तक कि वे मरने के लिए तैयार थे। हम उत्पत्ति 22 अध्याय में देखने जा रहे हैं कि इसहाक अपने पिता के द्वारा बलिदान के लिए चढ़ाया जाता है। वह 8 या 9 साल का छोटा लड़का नहीं है। जब यह घटना घटी उस समय इसहाक 33 वर्ष का था और वह अपने पिता का आज्ञाकारी था और मरने तक वह इसहाक के साथ सच था, और वह निश्चित रूप से यीशु मसीह के साथ भी सच था। यहाँ पर एक अद्भुत तस्वीर है यीशु मसीह के जन्म और जीवन में और इसहाक के जन्म और जीवन में। अंत में इसहाक का आश्चर्यकारक रीति से जन्म यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दर्शाता है। हम पहले ही पौलुस प्रेरित द्वारा कहे गए वचन को देख चुके हैं, रोमियो 4 अध्याय उसके 19 पद में, अपने मृतक समान शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा, मृत्यु से जीवन आया, यही पुनरुत्थान है। इस पर जोर देने के बाद वह प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहते हैं, रोमियो 4:25 में, वह हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमारे ही धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया भी गया। हमें इसहाक में यीशु मसीह की एक विशिष्ट असाधारण तस्वीर मिलती है। मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये पाते हैं कि परमेश्वर इब्राहिम के साथ और हाजिरा के साथ एवं उसके पुत्र इश्माइल के साथ दयालुता से वर्ताव करते हैं। उत्पत्ति 21 अध्याय उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने दासी और उसके लड़के के कारण व्यथित न हो, जो कुछ सारा तुझे कहे उससे सुन, क्योंकि इसहाक ही के वंश से तेरा नाम चलेगा। परमेश्वर यहाँ पर इब्राहिम को स्पष्ट करते हैं कि वह इश्माइल को पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। जिसके बारे में उसने प्रतिज्ञा की थी वह पुत्र इश्माइल नहीं है। हम उत्पत्ति उसके 21:13 में पढ़ते हैं, और दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, क्योंकि वह तेरा वंशज है। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे वंश से एक बड़ी जाति बनाऊंगा। इसलिए यहाँ पर वह इस लड़के इश्माइल से भी एक बड़ी जाति बनाने की बात कहते हैं। मित्रों, आइए हम इसे अधिक समझने के लिए उत्पत्ति 21 अध्याय उसके 14-21 पदों को पढ़ें, जहां पर लिखा है, अतः इब्राहिम ने बड़े सवेरे उठकर पानी से भरी चमड़े की थैली और रोटी ली और उन्हें हाजिरा को देकर उसके कंधे पर रखी, और उसका लड़का उसे देकर विदा किया। वह विदा होकर चली गई और वेशेरबा के जंगल में भटकती फिरी। जब थैली का पानी समाप्त हो गया तो उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे डाल दिया। तब वह तीर गिरने के टप्पे की दूरी पर जाकर उसके सामने बैठ गई, क्योंकि उसने कहा, कहीं मुझे लड़के की मृत्यु ना देखना पड़े, और वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। परमेश्वर ने लड़के का रोना सुना और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हाजिरा, तुझे क्या हुआ है? मत डर, क्योंकि जहां लड़का है वहीं से परमेश्वर ने उसकी आवाज सुनी है। अब उठ, लड़के को उठा और उसे अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली और उसने पानी का एक कुआं देखा, और उसने जाकर थैली को पानी से भर लिया और लड़के को पिलाया। परमेश्वर तो उस लड़के के साथ था, और वह बड़ा हुआ और जंगल में रहते हुए एक धनुर्धारी बना। वह पारान नाम जंगल में रहता था, और उसकी माँ ने मिश्र देश से उसके लिए एक पत्नी मंगवा ली। मित्रों, पवित्र शास्त्र में अब इश्माइल की वंशावली का उल्लेख नहीं होगा, परंतु उसके आगे वंशज आज भी अरब देश की मरुभूमि में रहते हैं। आगे हम देखते हैं कि इब्राहिम और अबीमेलेक बेशेरबा में पाए जाते हैं। तो आइए पवित्र शास्त्र की पुस्तक उत्पत्ति 21 अध्याय उसके 22-23 पद को पढ़ें। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक और उसके सेनापति पीकोल ने इब्राहिम से कहा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे साथ है, इसलिए अब तू मुझसे यहाँ परमेश्वर की शपथ खा कि न तो तू मुझसे न मेरे संतान से और न मेरी भावी पीढ़ियों से छलपूर्ण व्यवहार करेगा, परंतु जैसी करुणा मैंने तेरे ऊपर की है वैसे ही तू मुझ पर और इस देश पर भी जिसमें तूने प्रवास किया है करता रहेगा। मित्रों, यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो अबीमेलेक इब्राहिम के साथ समझौता कर रहे हैं या संधि कर रहे हैं और इस कारण से वे एक अच्छे मित्र बन गए। आइए हम आगे के पदों को पढ़ते हैं, उत्पत्ति 21 अध्याय उसके 32 से 33 पद। इस प्रकार उन्होंने बेर्शेबा में वाचा बांधी और अबीमेलेक उसका सेनापति पीकोल दोनों उठकर पलिस्तियों के देश को लौट गए। तब इब्राहिम ने बेर्शेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां उसने यहोवा से, जो अनंत काल का परमेश्वर है, प्रार्थना की। मित्रों, हम देखते हैं कि इब्राहिम जहां कहीं भी जाता है परमेश्वर को पुकारना या उसका नाम लेना नहीं भूलता है। अब हम अंतिम पद उत्पत्ति 21 अध्याय उसके 34 को पढ़ते हैं। और इब्राहिम पलिस्तियों के देश में बहुत दिनों तक प्रवासी होकर रहा। मित्रों, हमें बाद में बताया गया है कि इब्राहिम उस देश में जिसे परमेश्वर ने उसे देने की प्रतिज्ञा की थी वह उसमें हमेशा अजनबी और तीर्थयात्री बनकर रहा। यहाँ इस स्थान पर हमें उसका प्रमाण भी मिलता है। मित्रों, यहाँ पर 21 अध्याय समाप्त हुआ और इसी के साथ आज हम अपनी बाइबल अध्ययन को भी समाप्त करते हैं और अगले अध्ययन में उत्पत्ति 22 अध्याय से हम कुछ नए विषयों पर अध्ययन करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को सुनने के बाद आपको कैसे लग रहा है, कृपया आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिख कर भेजें। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन या समस्या है तो आप हमें अवश्य लिखें ताकि हम आपकी सहायता प्रार्थना व सलाह के द्वारा अवश्य कर सकें। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।